आप हैं SBS हिंदी के साथ।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि गैर ऑस्ट्रेलियाइयों को, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी नहीं हैं, स्थायी निवासी और नागरिक नहीं हैं, वे अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते। और कितने दिन के लिए नहीं आ सकते ये नहीं बताया गया है। इसका असर बहुत सारे लोगों पर होना है जो स्थायी ऑस्ट्रेलियाई निवासी नहीं हैं लेकिन इस वक्त बाहर हैं। उनके घर यहाँ हैं, उनका परिवार यहाँ है और बहुत सारी परिस्थितियों में उनके कारोबार यहाँ हैं, लेकिन क्योंकि वे स्थायी निवासी नहीं हैं इसलिए वे ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बाहर भारत गए हुए हैं छुट्टियों में या अन्य वजहों से, उन लोगों का रास्ता बंद हो गया है। फिलहाल वे ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पा रहे हैं और कब तक आ पाएंगे उन्हें पता भी नहीं है। इसका असर बहुत सारे लोगों पर होना है। क्या असर हो सकता है और क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में हमने बात की है ब्रिस्बेन स्थित माइग्रेशन एक्सपर्ट सुमन दुआ से। सुमन जी, आपका स्वागत है। तो सुमन, बताइए, ये जो फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने कि अब नॉन रेजिडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकेंगे, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे उन लोगों पर जो बाहर हैं इस वक्त?
इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि आज से इम्पोज होगा, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब तक है। सो इट कुड बी 2 weeks, इट कुड बी 6 months, नोबडी नोज दैट। सो ऑफकोर्स इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन होने वाली हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि एग्जेम्प्ट लोग कौन है जो एक्चुअली अंदर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसके अराउंड भी काफी कंफ्यूजन है। तो जो ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं या न्यूजीलैंड सिटीजन हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ सकते हैं। उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि स्पाउस, चाइल्ड एंड लीगल गार्डियन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इमीडिएट फैमिली मेंबर, नॉट देयर पेरेंट्स, स्पाउस, चाइल्ड एंड लीगल गार्डियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स, सिटीजन एंड न्यूजीलैंड सिटीजन कैन एंटर ऑस्ट्रेलिया, बट ऑफकोर्स उनपे वो जो 14 दिन का जो सेल्फ आइसोलेशन है वो अप्लाई होगा। सो उनको सेल्फ आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, बट दे कैन एंटर ऑस्ट्रेलिया। सो जैसे कि आपने पूछा इसके इफेक्ट्स क्या हैं, सो ऑफकोर्स बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इट्स एक्चुअली अ डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि सारे टेम्प्रेरी वीजा होल्डर्स पे ये बैन लगेगा, तो उसमें स्टूडेंट वीजा होल्डर्स भी आ जाते हैं, जिनको जिनके पास TR है 485 वीजा, वो भी आ जाते हैं। 491 जो कि प्रोविजनल वीजा भी शुरू हुआ है वो भी उसके अंदर है। 482 वीजा है जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है। 188 वीजा है जो प्रोविजनल बिजनेस वीजा। 494 वीजा, 408, 407, 476, 300 वीजा जो कि प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा है, ये सब उस टेम्परेरी वीजा होल्डर्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। नन ऑफ देम कैन एक्चुअली एंटर ऑस्ट्रेलिया इवन दो दे हैव अ वैलिड वीजा। अगर वो आने की कोशिश करते हैं, दे आर रिस्किंग द वीजा, क्योंकि उनके जो वीजाज हैं वो कैंसिल कर सकते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द BVB होल्डर्स, जो ब्रिजिंग वीजा बी लेके ऑस्ट्रेलिया से बाहर गए हैं, और ब्रिजिंग वीजा बी पे हमेशा एक एंड डेट होती है। सो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 2 weeks to 3 months का टाइम देते हैं। बहुत कम सर्कमस्टांसिस में कई लोगों को 1 साल का भी ब्रिजिंग वीजा बी मिल जाता है। सो ब्रिजिंग वीजा बी इज सेम एज ब्रिजिंग वीजा ए, विच लेट्स यू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया व्हाइल योर वीजा इज गेटिंग प्रोसेस्ड, बट इट जस्ट हैज अ ट्रैवल फैसिलिटी ऑन इट। तो वो ट्रैवल फैसिलिटी एक्सपायर हो जाती है, तो इन सब लोगों की, ऑफकोर्स 90% लोगों की जो ये ट्रैवल फैसिलिटी है, विच मीन्स BVB की जो एंड डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी व्हेन दे आर ऑफशोर, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। अब उनको वापस अंदर आने के लिए, जब भी ये सारा कुछ ठीक होता है, दे विल हैव टू अप्लाई अनदर वीजा टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। और वॉट इफ दे आर नॉट एबल टू गेट एनी अदर वीजा, लाइक अ टूरिस्ट वीजा या ETA या कोई और वीजा इफ दे आर एलिजिबल, इफ दे आर नॉट एबल टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, और अगर उनका वीजा कुछ ऐसा है जो सिर्फ ऑनशोर ही ग्रांट हो सकता है, जैसे कि 485 वीजा है, ये ग्रांट ही सिर्फ ऑनशोर हो सकता है, तो वो जो सारे स्टूडेंट्स अभी गए हुए हैं ब्रिजिंग वीजा बी लेके, इफ दे आर नॉट एबल टू एंटर ऑन टाइम बिफोर द ब्रिजिंग वीजा बी एक्सपायर, डज इट मीन दैट दे विल नेवर बी एबल टू गेट द TR? उन्होंने यहाँ पे 2 साल 3 साल पढ़ाई की है, they've spent so much money, and when it's time to get their work visa, they may not be able to have this opportunity. So, kafi logon ne AAT apni files appeal lodge ki hui hai, unko bhi bridging visa A unke paas hota hai, they are eligible for bridging visa B, to wo bhi travel karke offshore gaye hue hain, what happens to their AAT appeals, what if they can't come back, so unka kya hoga? So also there are a lot of other visas that are getting processed, but most visas they can be granted offshore. But some visas jo log waise hi travel karne gaye the, they have a valid visa but they cannot come to Australia. ये जो 482 वीजा होल्डर्स हैं इनकी जो फैमिली है मे बी दे वांटेड टू यूनाइट बट दे कैन नॉट डू दैट सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सम आंसर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट.
जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं एडमिशन ले चुके हैं और वो लोग अब आने वाले थे बहुत सारे केसेस में, तो क्या उनके एडमिशन पर भी इसका असर हो सकता है?
जी बिल्कुल हो सकता है. एक तो खैर कुछ यूनिवर्सिटीज तो उनकी जो एनरोलमेंट है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि जुलाई इनटेक में उनको कर रहे हैं. सो उनके जो वीजास कैंसिल हुए हैं ऑफ कोर्स उनको दोबारा से वो वीजास जो हैं लॉन्च करने पड़ेंगे. और बट देन अगेन वी डोंट नो कि जुलाई में तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगर जुलाई तक भी ये सब कुछ ठीक नहीं होता द नेक्स्ट इनटेक दे हैव अवेलेबल इज फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर. सो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा एंड यू नो यूनिवर्सिटीज हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस एज वेल. और वे राइट नाउ अगर हम सोचें ऑस्ट्रेलिया के अंदर अबाउट 2 मिलियन टेम्प्रेरी वीजा होल्डर्स हैं. सो बहुत लोगों ने अपने फैमिलीज के वीजाज लॉन्च किए हुए हैं दैट दे आर वेटिंग यू नो कि वो यूनाइट होंगे अपनी फैमिली के साथ. सो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू बी ऑन होल्ड. सो अभी हमें नहीं पता कि हाउ दे गोना डू द प्रोसेसिंग ऑफ दीज वीजाज, आर दे गोइंग टू पॉज इट और सिंपली रिफ्यूज इट, दैट वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट. बहुत सारे लोगों का इनवाइट आया हुआ है स्किल सेलेक्ट से जैसे वीजा लॉन्च करने का.
ओके.
और बहुत सारे वो लोग जो है वो सेक्शन 48 बार्ड है, विच मीन्स की वो ऑनशोर कोई वीजा लॉन्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑफशोर जाके ही वीजा लॉन्च कर सकते हैं बिकॉज देयर प्रीवियस वीजा वॉज रिफ्यूज इन ऑस्ट्रेलिया. तो अब ये सब लोग जो इन्वाइट है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 60 डेज तक होती है, उनको 60 डेज के अंदर अंदर वीजा लॉन्च करना होता है. तो ये लोग जो सिर्फ ऑफशोर जाके ही लॉन्च कर सकते थे, अब वो अगर ऑफशोर जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते. एंड ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स हियर एज वेल. प्लस अगर उनकी कंट्री में भी ट्रैवल बैन है तो वो वहां पे भी नहीं जा सकते. तो या उनकी ऑप्शन है कि वो ऑफशोर कहीं जाए और वहां वेट करें अपने प्रोसेसिंग का, बट देन वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग दे गोना टेक एंड हाउ दे गोना लुक एट दीज वीजा जो इन अंडर प्रोसेसिंग है. सो ये बहुत अभी सारा कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी लोगों को मतलब अनप्रिडिक्टेबल है कि ये क्या होने वाला है एक्चुअली.
लेकिन होम डिपार्टमेंट भी अवेयर होगा इस अनसर्टेनिटी से और दे मस्ट बी डूइंग समथिंग. हैव यू हर्ड फ्रॉम देम, कुछ कुछ बात आई है उनकी तरफ से?
हाँ जी, कुछ कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर मिला है. फॉर एग्जांपल जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं टूरिस्ट वीजा पे आए थे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे टूरिस्ट वीजा पे, वो क्या करें, उनका तो 3 महीने का उनको मिलता है तो वो क्या करें. सो अगर तो उनकी 8503 कंडीशन है जो कि नो फर्दर स्टे कंडीशन है, तो वो पहले तो अपनी वो कंडीशन वेव कराएं बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट एज पर लॉ कि अपनी कंडीशन वो वेव कराएं. डिपार्टमेंट ने इसके बारे में एक कुछ रिलीज भी की थी इन्फॉर्मेशन. वो एक सिंपली एक फॉर्म भरना होता है और रीजन बताना होता है, विच यू नो एवरीबडी इज अवेयर कि क्या रीजन है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग बैन्स इम्पोज्ड इन देयर कंट्री. तो 28 डेज वैसे इसका प्रोसेसिंग टाइम है, बट डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा केस ऑफिसर्स और एक्स्ट्रा हेल्प दी हुई है उस डिपार्टमेंट को, ताकि ये जो 8503 कंडीशन वेव करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो जल्दी जल्दी उनको रिप्लाई करें और एक्चुअली जल्दी जल्दी इसका जवाब भी आ रहा है.
बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए सुमन, आपका धन्यवाद.
धन्यवाद विवेक जी.
आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी. ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं.